अरविंद से आप तो श्रवण किए कि बलराम और कृष्ण स्वयं ने कृष्णदास कविराज को स्वयं कहते हैं कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। समस्त अवतारों के भी जो अवतारी है, जिनसे सारे अवतार आते हैं, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन इनकी जो पहला विस्तार है वो बलराम, ये केवल शरीर का फर्क है। एक ही स्वरूप भिन्न मात्र का है, आद्य काय मुह्य कृष्ण लीलारस है। यदि दोनों एक ही है, केवल कलर में फर्क है, उसको कहते वैभव प्रकाश तक ने क्या प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश में, वो सब आगे सनातन गोस्वामी शिक्षा में है। ये दोनों केवल कलर फर्क है, सांवले है काले, नहीं सांवले रंग के है कौन कृष्ण और ये है गोरे। नहीं तो जितनी प्रकार के जो कुछ इनकी लीलाएं हैं, सभी कार्य में इस समर्थ हैं। कृष्ण जो सब लीला कर सकते हैं, बलराम जी की भी सभी समस्त लीला में बलराम जी का भी भाग है। बलराम भी वैसे सभी लीलाओं को प्रकट करते हैं, लेकिन एक सेव्य भगवान है और दूसरा सेवक भगवान है। सेव्य भगवान कौन है? कृष्ण सेवा लेते हैं और सेवा करने वाले कौन है? बलराम। बलराम कैसे? बलराम तत्व को बहुत विस्तार से चैतन्य चरितामृत में वर्णन की गई है, आदि लीला के पांचवें अध्याय में। तो समय के आधार पर थोड़ा सीमित संक्षेप में बताएंगे कि बलराम कहते कि सृष्टि आदि लीला ये चार रूप धारण करके करते हैं। चार रूप धरी करें सृष्टि कार्य करते हैं। वो चारों रूप क्या है? संकर्षण कारणतय साई गर्भ दशाई च पयब्धि साई शेषश्च जस्यां सकला सह नित्यानंदाख्य रामं शरणं ममास्तु। कृष्णदास गोस्वामी पांच श्लोक लिखे हैं बलराम जी की तत्व के बारे में, बलराम नित्यानंद के। पहला श्लोक में कहते कि बलराम जी संकर्ष इनसे जिनसे कौन कौन आए? संकर्षण कारण तो कसाई विष्णु, गर्भ तो कसाई विष्णु, क्षीराब्धि साई और अनंत शेष इनसे भी प्रकट होते हैं। स्वयं बलराम तो स्वयं रूप में कृष्ण के साथ में गोलोक वृंदावन में लीला में रहते हैं। इनको मूल संकर्षण भी कहते हैं, लेकिन उन्हीं के विस्तार रूप में दूसरे जो चतुर्भुज आते हैं, चतुर्भुज में जो संकर्षण आते हैं उनको महासंकर्षण कहते हैं। और ये आध्यात्म सारे आध्यात्मिक जगत के कारण होते हैं। सारे वैकुंठ जगत को जगत के कारण, सारे वैकुंठ जगत में एक प्लैनेट में रहते हैं और पूरे वैकुंठ आध्यात्मिक जगत को धारण करके रखे हैं। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि सृष्टि आदि का कार्यतार आज्ञार पालन शेष रूपे करे विविध सेवन। सृष्टि आदि कार्य को इन्होंने ये चार रूप धारण करके करते हैं। संकर्षण के रूप में आध्यात्मिक जगत को पूरा विस्तारित करके ही इसको रखे, इसका धारण भी करके रखते हैं। और संकर्षण से ही कारण तो कसाई विष्णु जो विस्तारित होते हैं, कारणान्न वसागर में शयन करते हैं, उनके एक श्वास का अवधि ही किसका? परमायु, ब्रह्मा जी का परमायु है। एक बार निश्वास वायु छोड़ते हैं, प्रश्वास वायु लेने में जितने टाइम लगता है, इतना भी एक ब्रह्मा जी का परमायु है। और ये ब्रह्मा, ये जो कारण तक सही विष्णु जिनके लोमों कुप से असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, ये जिनसे आए हैं, इनकी सृष्टा है संकर्षण, और संकर्षण की सृष्टा फिर बलराम, इनके विस्तार सृष्टा विस्तारित होकर आए हैं। इसलिए कारण तक सही जो सभी कारण के कारण माने जाते हैं, जैसे श्लोक ब्रह्म संगीत में जैसे नहीं बोला टाइम जाएगा। तो इसलिए कारण तक सही विष्णु तो कारण तक सहकर शयन करके ही केवल ब्रह्मांड को सब सृष्टि करते, ब्रह्मांड से लोम कूप से निकलते जाते हैं। और फिर वो गर्भोदय साई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, अपने पसीना जल में उसको पूरे संपा उसको भरकर उसमें ही शयन करके रहते हैं अनंत सज्जा में। और उनके नाभि कमल से कौन निकलते हैं, नाभि, नाभि से कमल निकल और कमल में ब्रह्मा जी की उत्पन्न होता है। इसलिए कारण दकसाई विष्णु एक ही है, लेकिन गर्भ दकसाई विष्णु कई है, प्रत्येक ब्रह्मांड है जितनी ब्रह्मा है इतनी गर्भ दकसाई विष्णु भी है। हमारा जो सब ब्रह्मांड समझते सबसे छोटा है, और ये इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा चार माथा वाले, ये पहले देखे द्वारका में कितनी ब्रह्मा और हैं परार्ध मुख वाले ब्रह्मा, लेकिन ये सब ये गर्भ दकसाई विष्णु के नाभि से निकलते हैं। तो इसलिए अन्य जो विष्णु रहते हैं खिल दकसाई विष्णु, ये परमात्मा के रूप में ये प्रत्येक जीवात्माओं के हृदय में निवास करने वाले हैं। और जो दुष्टों को विनाश करना, संतों को पालन करना, इनकी ही काम है। ये एक खिरदकसाई विष्णु ही भिन्न भिन्न अवतार लेते हैं, अवतार धारण करके ये भी राक्षसों को वध करते हैं और संतों को पालन करते हैं। और अनंत शेष जो रह गए बात में, अनंत शेष सभी प्रकार की सेवा करते हैं। हम जो बैठे हैं, जो मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर है, आप जो मंदिर की कोई कभी कई मंदिर निर्माण करना चाहते हो, पहले भूमि पूजन करके वहाँ किसको स्थापना करते हैं, हैं? ऐसी प्रकार अध्यास जहाँ भी है ब्रजमंडल, जो संपूर्ण ब्रजमंडल है, ये ब्रजमंडल को कौन ही है, स्वयं बलराम अपने को विस्तारित करके ही ब्रजधाम के रूप में विस्तार हो, हैं? शांत भाव से सेवा करते हैं। किसकी विविध सेवन कैसे करते हैं, शांत रस में ये अपने को विस्तारित करके पूरे ब्रजधाम के रूप में विस्तारित हुए हैं। जितने भी पेड़ पौधे मयूर पशु पक्षी ये सब उनके ही विस्तार है। ये धाम की जो देख रही है, ये धाम के रूप में स्वयं बलराम ही विस्तारित है। केवल वृंदावन की तो ईश्वरी है कौन, राधा रानी, लेकिन पूरा ब्रज की मालिक बलराम जी है। वो आपको कहीं भी निवास करने के अधिकार दे सकते हैं बलराम जी, अन्य जितनी भी वन है। और कृष्ण किसी इंटरफेयर नहीं करते हैं, ना बलराम और राधारानी में बहुत संपर्क अच्छे मर्यादा के साथ है। यदि कहीं रास्ता पर जाते हुए राधारानी देखते कि इस बलराम जी के चरण चिन्ह पड़ा है, वो इस मार्ग में गोवर्धन के तलाट में इस मार्ग में गए, फिर राधारानी अपने मार्ग बदल देती, उस मार्ग में नहीं जाती। बलराम जी जब देख लेते कि राधारानी के चरण चिन्ह, तो तुरंत वहां से घूम जाते हैं, अपने मार्ग बदल देते, क्योंकि इसलिए वो शांत रस में तो पूरा धाम के रूप में स्वयं को विस्तारित किए हैं। तो संक्षेप में केवल बोल रहा हूँ कि समय के आधार पर। तभी दास्य रस में ये भी भगवान की सेवा करते हुए दास अभिमान सदा रखते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु सदा गौरांग के दास मानते हैं अपने को, कि जैसे आप महाराज के लेक्चर सुने कि वही बलराम, वही नित्यानंद और लक्ष्मण के रूप में भी अन्य लीला में, रामचंद्र की लीला में तथा गौरांग लीला में भी पधारे थे। तो ये सेवक रूप में आपके सेवा अभिमान रखते हैं, हैं? जब ये वो प्रसिद्ध लीला ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी आप दास्य रस के उदाहरण देते हुए एक लीला को व्यक्त करते हैं कृष्ण ने चेतन चरितामृत में, एक श्लोक कोट करते हैं भागवत की, भागवत से जो भी दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ, लक्ष्मणा को सांब ने हरण किया और सभी जो कुरुवंशी मिलकर इसको अरेस्ट कर लिए, बंदी बना के रख लिए। खेल लगाने वाले कौन थे, नारद मुनि है। नारद मुनि वहां से आ गए मैसेंजर बनकर द्वारका में पहुंचे कि इनको कुरुवंशी को बंदी बना लेता कि जदुवंशी को, पहले तुम लोग खा पी के सो रहे हो, वहां तुम्हारे तुम्हारे राजकुमार को बंद कर, बंदी कर लिया है वो लोग कुरुवंशी। बस गुरुवंशी तो क्षेत्रीय कर खून है, गर्म हो गए। बोले अच्छा कौन है, इतना हिम्मत है, सब लड़ाई के लिए तीरथ तैयार हो गए। लेकिन बलराम जी कहे कि नहीं नहीं यार, ये सब खटना बलराम सुन लिए कि दुर्योधन की पुत्री है। बोले ये दुर्योधन मेरा शिष्य है, चिंता मत करो, मैं जाके उसको समझा दूंगा, मैं लेके आऊंगा शांति का, दोनों के साथ वर कन्या को लेके आऊंगा, मुझे ही मैं अकेले ही जाके सब समाधान कर दूंगा। फिर भी उद्धव कई दो चार लोग उनके साथ गए। बलराम जी कहे कि मैं पहले समझाता कर सू, जो नहीं होगा तो फिर जो देखना, अभी शांत हो। अब बलराम जी ने पहुंचे कहाँ, हस्तिनापुर पहुंच गए, और लेकिन बंदर में नहीं घुसे, जैसे हमेशा जाते ऐसा नहीं, बॉर्डर में एक जगह में कैंप डालकर वहां रहे, खबर दिए दुर्योधन को तो जाएगी दुर्योधन को खबर, दुर्योधन के पास में खबर पहुंचा कि बलराम जी ने पधारे हैं, स्वयं साक्षात बलराम स्वयं आए। सुनकर तो सारे कुरुवंशी बड़े प्रसन्नचित्त होकर भागे, हैं विशेष रूप में दुर्योधन भागा और वो सब लोग गए बलराम जी को प्रणाम किए, बहुत सम्मान किए इनको, आए सम्मान करके इनके चरण अभिषेक आदि इनका आरती आदि करके इनको यथोचित सम्मान किए। लेकिन बलराम जी ने कहे कि इससे मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, पहले उनको लेके आओ लक्ष्मणा को, और लक्ष्मणा को वो सांब को एक साथ में क्या पति पत्नी के रूप में मैं देखना चाहता हूँ, ये दोनों को मेरे सामने लाकर समर्पण करो, ये दोनों को पति पत्नी रूप में आए, इसमें कोई कोई बातचीत नहीं होगा, बस सीधे लेके आओ, लेके आओ उनको, हाँ लक्ष्मणा को लेके आओ सांब के साथ में, सांब को बंदी बनाने का आपको इतनी हिम्मत हो गया, इसकी बंदी बनाया, दोनों को सब पति पत्नी रूप में मैं देखना चाहता हूँ। ये बात को सुनकर उनका भी खून गर्म हो गया, किसका है कुरुवंशियों की। दुर्योधन कह के अच्छा, अरे आम ही हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठता, मैं पूरा विश्व के सम्राट है, और ये जो द्वारका में रहने वाले ये गाय चराते थे कहाँ वृंदावन में, और आगे द्वारका देश बन गया द्वारका, ये जदुवंशी वो हमारा अधीनस्थ राजा है, हमारी कृपा से इनको क्षत्रिय द्वारका देश के रूप में कृष्ण क्षत्रिय धारण करते हैं, मुकुट धारण करते हैं, सिंहासन में बैठते हैं, अभी सब भूल गए, अभी हमको ऑर्डर देना शुरू कर दीजिए, ये तो हमको हमको भी आके ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ऐसे कह के सब थोड़ा बीच मने कह रहे थे, बलराम जी के सामने से कहने, बलराम जी सुन रहे थे और अटट हंस कर हंसने हंसे, बोले अच्छा भगवान श्री कृष्ण को इनकी अनुमति चाहिए मुकुट धारण करके और सिंहासन में बैठने के लिए, छत्र धारण करने के लिए। तो बलराम जी ने कहे कि तो भागवत के श्लोक को वहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट करते हैं, दशम स्कंद की 68 अध्याय के जो 37 नंबर श्लोक को है, जस्यांघ्रि पंकज रज अखिल लोकपालयी मल्युक्तमयी धृतम उपासितम तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भव अहं अपि जस्य कला कलाया श्रीश्चो एम श्रीश्य नृपासनंको। तो कह कि नृपसन के नृप ये सिंहासन क्या है, तुच्छ बात है, अरे हम सब इनके सेवक है, शिव ब्रह्मा आदि जितनी देवता लोग मुनि ऋषि महर्षि सब कृष्ण के दास मानते अपने को, और स्वयं मैं मुझे गुरु मानता ही है, कौन बोल रहा हूं सो पता नहीं कि मैं भी स्वयं उनकी दास है, किसकी कृष्ण की दास हूं, उनके आदेश पालन करने के लिए हम सदा तैयार रहते हैं, और उनकी प्रति इसी वाक्य उपयोग कर रहे हैं, बड़े हंसने लगे और पूरा अपने लंगड़ को बढ़ाए हैं, बलराम जी के लंगड़ जानते हैं दिव्य लंगड़ है, ऑर्डिनरी नहीं है किसे, वो जितनी तक बढ़ाना चाहेंगे बढ़ जाएंगे, सृष्टि के अंत तक जितने छोटा करना चाहेंगे उतना छोटा भी हो जाता है, तो अपने लंगड़ को खोले और बढ़ाए बस, हस्तिनापुर के चारों साइड में ऐसा ही लंगड़ में पूरा क्या कर लिए, दाग लगा कि ऐसा बोले हस्तिनापुर को उखाड़ के पूरा फेंक दूंगा गंगा में, ये रहेगा ना, ये इनका घमंड रहेगा, और जो चार साइड खोल के पूरा छेद बनाकर उसको उठाने लगे, भूमिकंपन सर पे सब हल्ले लगे, सब लोग भीष्मदेव डांटे, बोले कि क्या कर रहे हो तुम लोग, किसके साथ टक्कर देने जा रहे हो, ये बलराम जिनकी अंश अनंत से जिनकी विस्तार है, जो हजारों फणों में सारे ब्रह्मांड के एक सोरसों की दाना के समान सिर पर एक एक सिर पर एक एक सोरसों की दाना पर दाना के समान ये ब्रह्मांड रुका हुआ है, वो जानते हो खाली सिर हिला देगा तो सब खत्म हो जाता है, और उनके साथ टक्कर दे रहे हो तुमको, तुम्हारा कोई भी तुम सोच रहे हो कि करना है, तुम्हारे पास अर्जुन सब बड़ा बड़ा सब दिव्यास्त्र रखे हो, बहुत कुछ काम नहीं करेगा, उठा के सबको फेंकने के लिए तुरंत जाओ सांब को लेके आओ, किसके साथ लक्ष्मणा के साथ, तुरंत लेके इनके चरण चरण में समर्पण करो, यदि जीना यदि बचना चाहते हो, नहीं तो तुम्हारे कोई हमारे किसी की भी शक्ति सामर्थ्य नहीं है उनके साथ लड़ाई करना है। तो ये बात को सुनी भीष्मदेव सब तुरंत भागा है, लक्ष्मणा को सांब को ला के तुरंत बलराम के चरण में अर्पण कर दिए। यहाँ कहने का मतलब बलराम जी की दास का अभिमान है, जैसे नित्यानंद प्रभु को चैतन्य की दास, लक्ष्मण जी को राम की दास, इसी प्रकार बलराम जी स्वयं अपने कृष्ण का ही दास अभिमान रखते हैं, ये सेवक भगवान है, तो इसलिए सदा सेवा करना चाहते हैं। और शांत दास्य साख्य भाव से भी ये सेवा करते हैं कृष्ण की, बलराम जी सखा। लेकिन ये वात्सल्य मिश्रित साख्य, ये बड़े भाई है, बड़े भाई होने के बाद पर वात्सल्य मिश्रित साख्य होता है, क्योंकि साथ में एक साथ में जाते हैं, कहाँ गोचारण लीला में जाते, एक साथ ही बड़ी खाते हैं, तब पर गोचारण लीला में जाते हैं, हंसते हंसते खेलते कहीं कूदते साथ में ही हैं। जैसे वृंदावन में प्रवेश करते तो कृष्ण ही स्वयं कहते कि बलराम जी देखिए, दाऊ जी देखिए, ये वृक्ष लता सब आपको ही प्रणाम करें, क्योंकि इनके फल फूल में लदे हुए वृक्ष लता जब नीचे झुक जाते हैं तो प्रकृति में कृष्ण को ही सम्मानित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन कहते हैं दाऊ जी को कहते हैं, दाऊ जी देखिए आपको प्रणाम कर रहे हैं, सुबह आपकी सेवा करने की अभिलाषी है, ऐसे कहकर दोनों एक साथ में चलते हैं। कृष्ण बलराम की ये बड़े बहुत सुंदर संबंध साख्य रस में एक साथ में खेलते कसरत, जो जैसे आप सुने अभी पड़म्बासुर की बद्धवी महाराज संक्षेप में बोल दिए तो उसमें सुने हैं, दो गोष्ठी हो गए, एक कृष्ण का दूसरा बलराम जी की गोष्ठी हो गया। उसमें कुश्ती कसरत में भी कभी खेलते कूदते हैं, जैसे ही सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि दशम स्कंद की 11 अध्याय 40 नंबर श्लोक में कहते कि मानव नदंतौ युधाने परस्परम अनुकृत्य ऋतैर्जन्तु शरतु प्राकृतैर्यथा। ये श्लोक भागवत के दशम स्कंद से उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसको कोट करते हैं कि किस प्रकार ब्रुषयमान कभी कभी कृष्ण बलराम ऐसे कपड़े को ढांक कर मुख में कैसे बन जाते हैं, ब्रुष माने क्या, बैल जैसे हैं, बैल जैसे ऐसे सिर से लड़ाई करते पशु की तरह, कभी पशु पक्षियों की आवाज़ को नकल करते हैं, कभी कई प्रकार के जो ऐसे साख्य रस के ही लीला भी है। लेकिन साथ साथ हम जानते हैं कि जब ये घर से निकालते हैं नंदगांव से तो यशोदा बोलती है, ए बलराम कन्हैया नटखट है, तेरे भरोसा में छोड़ता हूँ इसको, इसको देखभाल करते रहना। हाँ ये किसको बलराम, कन्हैया तो मुस्कुराते बलराम जी कहते हैं हाँ यशोदा मैं चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं देखभाल कर लूँगा, पूरे कन्हैया को संभाल लूँगा। हाँ तो इस प्रकार कन्हैया के साथ में है, अब बलराम जी की साख्य रस में भी सखा के रूप में आए, एक साथ में निकालते, यदि वो बड़े भाई होने के नाते इनके रहें, वो तो महाराज ने बोले कि लक्ष्मण की लीला में वो नहीं, रामचंद्र लीला में लक्ष्मण थे, लेकिन कई कार्य से सीता की सीता को लेके छोड़ना जंगल में एकांत में लेके छोड़ देना गर्भवती है थी, और कई लीला में वो करना नहीं चाहते थे, जो सीता की अग्नि परीक्षा आदि हुआ उसको लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगता है बड़े, लेकिन छोटे भाई होने के नाते इनको सहन करना पड़ता था, इसको जो कुछ बलराम ने रामचंद्र जी बोलते थे इसको पालन करना पड़ता था, रो रो कर रात उसको पालन कर, तब से प्रतिज्ञा ले लिए थे भविष्य में कभी कभी भी लीला में आऊंगा, कभी भी छोटे भाई बन के नहीं आऊंगा। इसीलिए कृष्ण लीला में कैसे आए, बड़े बन के आए हैं, इसलिए दाऊ जी भगवान दाऊ जी कहकर तो फिर इनको थोड़ा सम्मान करते थे, लेकिन इसलिए ये साख्य भाव से तो सखा के रूप में सभी प्रकार के बहुत विस्तार से तो हम वर्णन नहीं कर पाएंगे स्थलों के, तो इसलिए वो ये वात्सल्य भाव से वात्सल्य मिश्रित साख्य बड़े भाई हुए थे, इसलिए कभी कभी डांटते थे, जैसे रुक्मी का रुक्मणी का हरण करने के लीला में भगवान ने हरण करके आए, रुक्मी ने पीछे आया रुक्मणी का भाई, और भगवान ने इसको तो भगा दिया, युद्ध भगवान के साथ क्या लड़ाई करेगा, प्रतिज्ञा लिया कि यदि कृष्ण से मैं मेरे भाई ने मेरे बहन रुक्मणी को नहीं छुड़ा पाऊंगा, मैं ये राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा, राज्य की बाहर में रहूंगा, ऐसा कोई कहा है, अब भगवान के साथ वो क्या लड़ाई करेगा। अब भगवान ने बहुत आसान से परास्त करके उसे बांध दिए, रथ का पीछे लटका दिए, किसको, रुक्मी को। लेकिन बलराम जी आके देखे कि आके वो उसको खुल दिए, हाँ देखिए रुक्मणी रो थोड़ा रो रही थी अपने भाई के दुर्दशा देखकर, तो रुक्मणी के सामने थोड़ा भगवान को डांटे हैं कि ये क्या होता है कन्हैया, ये कोई हो रहा है, ऐसे ठीक है, जो भी हमारा संपर्क हो गया है वो हमारे साला है, साला बन गया और इसको ऐसे ही रथ के पीछे से घिसेड़ देना, ये कोई बात होता है ऐसे है, ऐसे कहकर थोड़ा सा भगवान कृष्ण को डांटे हैं रुक्मणी के सामने, रुक्मणी थोड़ा सा प्रसन्न हुआ उसको खोल दी रुक्मी को, बाद में फैली वही रुक्मी को मार डाले कौन, बलराम जी, बाद में रुक्मी का वह शादी कुछ शादी फंक्शन था, उसका लड़के का शादी हो रहा था, गए थे आइए कृष्ण बलराम के था, तो वहाँ पर भी देखिए बलराम जी को प्रोत्साहित किया कि सटा खेलने के लिए, बलराम सटा बड़ा नहीं खेलना चाहते, लेकिन उनको कहे तो क्षत्रिय है ना, जो तो ठीक है स्वीकार किए, लेकिन खेलते थे पहले दो बार तो ऐसा ही वो थोड़ा थोड़ा पैसा डालता था, उसको इसका जीत हो गया ठीक है रुक में, तो बोल रहा हूँ कितने खेलने में शौक ही नहीं है, लेकिन तीसरे बार जीते जो हजार स्वर्ण मुद्रा डाल दिए तब जीत गए, लेकिन फिर भी वो तो उनके साथ बैठे थे कलिंगराज और मगध गिर सब कुछ कई लोग बैठे हुए थे, किसके साथ रुक्मी के साथ है काशीराज से बैठे थे, तो वो लोग ने सब समर्थन करते थे किसको हैं रुक्मी को, कहते नहीं 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 रुक्मी का जीत हुआ, ये जीता नहीं, ये क्या जानता है, गाय चलाता था इधर, ये खेलना थोड़ी जानता है, ऐसे कहते तो हंसी उड़ाते थे। लेकिन तीसरे देवता लोग ने तीसरी बार फिर जब बलराम जय हुआ, देवता लोग ने स्वर्ग में ये ऐसे बोल रहे थे, देवता लोग ने स्वर्ग में से कहे कि बलराम ये तुझे ठग रहे हैं, तुम्हारा जीत हुआ है, ये जो देवताओं की वचन सुन, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे थे। जब बलराम जी उठाए अपने गदा लगा एक पहाड़ पहा, जो प्रहार है किसको रुक्मी का सिर समाप्त कर दिए हैं है? है? अभी रुमोहर्षण की बात सुनते थे, खाली घास ऐसे घास लेकर क्या वो उस घास को ऐसे टच करा कि उनका जान ले दी है। बलराम जी बड़ो बड़े इसी लीला में, बलराम की लीला में थोड़ा ऐसे लीला है, लेकिन वही जो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं कितने दयालु बनकर आए हैं, पिटाई भी किया कौन माधाई ने फेंका शराब के कुल सिर फोड़ गया, तब भी बोलते थे कि मारा है मारा तो मारा है, लेकिन बोलो आओ आओ माधाई है बोलो हरी है हरे कृष्ण तो बोलो है, कितनी दयालु बनकर नित्य महाप्रभु तो क्रोधित होकर आए, चक्र को बुलाए आ जाओ, सुदर्शन आकाश में आ गए जगाई माधाई देख रहे थे, भयभीत होकर पीछे गिरे हैं, गौरांग महाप्रभु तो उसको विनाश करने वाले थे, लेकिन जगह चरण पकड़ लिया हाँ पैर को पकड़ के उनको रुके, बोले नहीं इस अवतार में नहीं, तो बलराम के रूप में सब किया था लेकिन नित्यानंद के रूप में नहीं है, तो बड़े इसलिए निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत तो जुड़ा है ना निताय भी नहीं भाई, राधा कृष्ण पाई तेनाय दृढ़ करी धर निताय पाए, इनकी कृपा के बिना, तो इसलिए मैं कह रहा था कि कौन सा साक्ष्य रस के ये लीला को प्रकट किए हैं, साक्ष्य रस में भी भगवान की सेवा करते हैं, इसी प्रकार उन्होंने वात्सल्य रस में भी भगवान की सेवा करते हैं, वात्सल्य रस में जो गोचरण लीला करके कभी थक जाते हैं, बलराम जी किसी ग्वाल बाल की जगह पर कैसे सिर रखकर सो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण सोए जाकर इनको पैर दबाते हैं, किनके बलराम जी के पैर दबाते क्योंकि बड़े भाई है, इसलिए कृष्ण स्वयं जाके पैर दबाते हैं, केचित क्रीड़ा परिसंतं गोपा संग उपवर्हणम स्वयं विश्रमय त्याज पाद संभावनादि भी, आज पाद चरण को भी जाकर कृष्ण जी के दबाते हैं, किसकी बलराम जी की चरण सेवा करते हैं है? इसलिए बलराम जी के साथ बड़े भाई होने के नाते कई लीलाएं हैं, लेकिन तो इसलिए इनको वात्सल्य रस में भी कृष्ण की सेवा करते हैं, बड़े भाई के नाते इनको डांटना इनको देखवा ऐसे कोई इनकी थोड़ा अधिकार है, लेकिन फिर भी वो अपने असली जो स्थिति दास्य भावना को कभी त्यागते नहीं है। इसी प्रकार ब्रज कई लोग खेला जाए, ब्रज में चार प्रकार के भाव चार रस में विशेष रूप में खेला किए हैं, शांत दास्य साख्य वात्सल्य, कृष्णदास के ब्रज गोस्वामी कहते कि ये चारों लीला में चारों रस में बलराम जी कृष्ण की सेवा किए हैं, लेकिन और भी आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अन्य रसिक आचार्य जो है कहते हैं कि प्रकृत में ये माधुर्य रस में भी सेवा करते हैं कृष्ण की, माधुर्य रस जैसे नित्यानंद की शक्ति कौन है जाह्नवा नित्यानंद प्रभु का ही शक्ति है, उन्हीं का ही विस्तार है, इसी प्रकार ये अनंग मंजरी है, जाह्नवा माता की कौन अनंग मंजरी है कौन राधारानी की छोटे बहन है, इसलिए बलराम जी स्वयं को ही विस्तारित करके ही अनंग मंजरी के रूप में राधा रानी के छोटे बहन बनते हैं, और ये माधुरी लीला में राधा कृष्ण की सहायता करते हैं, इसलिए यदि बलराम जी की कृपा नहीं होगा आप किसी भी रस में भक्ति नहीं प्राप्त कर पाओगे हैं, इनके नाम शेष है, ये सारे सेवा को अकेले ही शेष कर देते हैं, कृष्ण का जितना सेवा सारे सेवा का अधिकार किसका है बलराम की, वो कोई सेवा छोड़ते नहीं है हैं, इसलिए छत्र पादुका सज्जा उपाधान वसन आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन एतो मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे कृष्ण र शेषता पाया शेष नाम धरे। कृष्णदास के कहते ये अनंत इनको शेष कहते हैं, ये अनंत कहते हैं, इनकी अनंत इनकी ये अनंत मुख से तो भगवान की गुणगान करते रहते हैं लेकिन इनकी गुणगान इनकी बारे में हम कुछ नहीं समझते। हम तो एक छोटा पक्षी की तरफ जैसे आकाश तो विस्तार सर्वत्र है, इसमें कोई पक्षी जा रहा है जिसका जितना शक्ति जितनी उड़ता है उड़ पाएगा जितने तक, ऐसा ही बलराम जी की शक्ति पर हमारे बारे में समझना इसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन बलराम जी फिर भी भगवान की सेवा करते कि 10 रूप धारण करके करते रहते हैं, छत्र जो छत्री भगवान के सिर पर ऐसे टंगा जाता है भाई कहीं अल्टार में रहता बा कहीं है छत्री रूप में ऐसे ऊपर में रखते हैं कुछ भी, ये बलराम जी का ही विस्तार है। छत्री पादुका भगवान जो कढ़ऊ मारते हैं कोई जूता पहनते हैं पैर में वो क्या है, वो स्वयं बलराम जी अपने को विस्तारित करके उस रूप में है। सज्जा हाँ जी सज्जा में शयन करते हुए हैं, वसन जो वस्त्र पहनते उपाधान हैं जिसमें आराम करते हैं जो खटिया इनका आवास स्थान जो मंदिर है जहाँ पर हम देखते हैं इसी संसार में जिस जहाँ पर भगवान निवास करते हैं मंदिर में आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन जो के अपने नित्य निवास स्थली में, और जो यज्ञ सूत्र भी धारण करते हैं भगवान ये यज्ञ सूत्र भी स्वयं अनंत शेष है, और सिंहासन जिस सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं ये सभी इन्हीं का ही विस्तार है। किसका अनंत शेष बलराम ही स्वयं को विस्तारित करके ही सेवा करते रहते हैं। आप किसी भी प्रकार के सेवा प्राप्त नहीं कर पाओगे किसकी यदि किसकी कृपा नहीं होगा, इसीलिए कहते कि है ना नीताई भी नहीं भाई राधा कृष्ण पाइते ना है, बलराम जी की कृपा प्राप्त नहीं करने से आपको सेवा अधिकार नहीं मिलने वाला है। आप सोचते कि हम राधारानी के शरण में आ जाएंगे राधारानी के आके हम तो सेवा कर लेंगे राधारानी के हैं वृंदावन में राधे राधे हैं, लेकिन जानते नहीं कि बलराम और राधारानी में कितनी अच्छे उनकी संपर्क है मर्यादा के साथ। जिसको बलराम तो मैंने मारेंगे तो राधारानी नहीं रखती हैं जानना चाहिए हैं। गौर गदाधर की लीला में जब नित्यानंद के ने गौर लीला में वो गदाधर पंडित है ये नित्यानंद है, नित्यानंद प्रभु कहते हैं यदि किसी ने गदाधर के साथ द्वेष रखकर मेरे चरण में आएगा मैं स्वयं इसको चरण से भगा दूंगा। गदाधर पंडित भी कहते हैं यदि कोई निताय को नहीं मानता है निताय के साथ द्वेष करके मेरे सर पास में आता है गौर के पास आता है हम इसको नहीं रखते चरण में इसको हटा देते हैं। तो इसलिए बहुत सुंदर जिसको आप बलराम जी को चरण में आश्रय रखना चाहिए वृंदावनेश्वरी केवल तो वृंदावन वास दे लेकिन ब्रज में कहीं भी रहो बलराम जी को आश्रय करके बलराम जी अत्यंत दयालु है। और इसलिए ये इनकी सेवा इनकी आश्रय एत भेद करी कृष्ण सेवा करे सभी प्रकार के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। इनको शेष इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान के समस्त सेवा को अकेले ही शेष कर देते हैं, कोई बाकी आपके लिए नहीं रखते हैं वो सब इनका ही है। आपको यदि सेवा चाहिए इनके पास जाना पड़ेगा किसके पास, वो सेवक भगवान है सेवक भगवान सेवा करने के लिए उनके वो सेवा करके ही भगवान है तो उनकी आज उनकी कृपा होगा तभी नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धर नितायर चरण दुखानी नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। इसीलिए कृष्ण नौतम दास ठाकुर को सीधा कहते से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेलतार से ही पशु बड़ दुराचार। वो पशु है मनुष्य शरीर धारण करके रखा लेकिन प्रकृति में इसका जीवन बेकार गया है जो जो नित्यानंद बलराम के शरण में नहीं आता है। इसलिए बलराम जी की आज आविर्भाव तिथि में हम सभी उनके शरण में अवश्य उनकी गुणगान होना चाहिए बलराम जी की। अब बलराम जी के गुणगान को सुनकर कन्हैया बड़े हर्षित होते हैं प्रसन्न होते हैं बड़े भाई का कोई कोई इनका गुणगान करता है इसलिए कहते कि सहस्र बदने करे कृष्ण गुणगान निरवधि गुणगान अंत नहीं पान सनकादि भागवत सुने जार मुखे भगवान र गुण कहे भाषे प्रेम सुखे। ये हजारों मुखों से अनंत हैं ये अनंत काल तक अनंत समय से हैं कभी इसका आदि अंत नहीं कहो से प्रारंभ के कोई जानता नहीं है लेकिन हाँ लेकिन निरवधि वो गुणगान कर रहे हैं, ये अनंत काल तक करते रहेंगे, इनके समाप्त नहीं होता है कृष्ण गुणगान करने में, सदा गुणगान करते रहते हैं। और सनकादि चतुसन चतुचार कुमार को भी इन्होंने दिव्य ज्ञान प्रदान किए हैं, ये आकर उन्हीं की मुख से भागवत सुने। किन की मुख से? ये अनंत की मुख से, अनंत सच की मुख से ही हाँ ये चारों कुमार आकर इनसे ही भागवत श्रवण किए हैं। इसलिए किसी भी ने कहते कि इनको किसी रूप में नेग्लेक्ट करके आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, डायरेक्ट कृष्ण के पास में नहीं जा सकते किसी की, इसलिए इनके शरण में जाना जरूरी है, क्योंकि ये समस्त लीला में सभी रस में भगवान की सेवा सेवक है, सेवा करते हैं, तो इसलिए सेवक भगवान है। अभी समय हो गया है, 10 मिनट बाकी हैं, अतः आविर्भाव है विशेष रूप में, जैसे महाराज ने भी श्लोक पढ़े आप गर्गमुनि की नामकरण पढ़कर सुना है, तो इसी प्रकार उनके नामकरण भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी किया है, कृष्ण स्वयं उनके जन्म की पहले उनके नामकरण कर दिए थे, कौन? भगवान श्री कृष्ण स्वयं किए हैं, इसका बलराम जी के नामकरण, जो जोगोमाया देवी को आदेश दे रहे थे कि आप कृपा करके ये जो मेरे सातम गर्भ जो देवकी का है, जो मेरा ही अंश है आया है, तो आप कृपा करके उसको ट्रांसफर कराओ, कहाँ से? देवक्या जठरे गर्भं शशाख्यं धाम मामकं तत्सन्निकस्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जोगमाया देवी को आदेश देते हैं कि देवकी की गर्भ में संकर्षण या शेष नाम से मेरा ही अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई से रोहिणी की गर्भ से स्थानांतरित, रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित कर दो। एक थे किसकी गर्भ में? देवकी की गर्भ में, सातम गर्भ में थे, तो भगवान ने उस समय भी इनके नामकरण भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग रहे, जन्म पूरा खाली जन्म कथा कहने से पूरा क्लास जाता था, तो वहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि कृष्ण कहते कि गर्भ संकर्षणातंग वई प्राहु संकर्षण भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्र बलक्षयात्। देखो कोई संसार में सुना कोई छोटा भाई नामकरण करता है बड़ा भाई का? ये बड़ा भाई है ना, दाऊ जी है, लेकिन पहले से इनकी नामकरण कर रहे, पहले जन्म के पहले, अभी माह की अभी जन्म भी नहीं हुआ, माह गर्भ तब से नामकरण हो रहा, नामकरण कर रहे हैं कृष्ण छोटे भाई बन के, बाप में आएंगे अष्टम गर्भ में, लेकिन होना जोगमाया की तरह कहते कि ये देवकी गर्भ से निकालकर रोहिणी की गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी के पुत्र बाप में संकर्षण भी कहलाएंगे। इसलिए कहते गर्भ संकर्षण आप वही है, एक गर्भ से आकर्षित करके दूसरे गर्भ में भेजे जाएंगे, देवकी की गर्भ से जाएंगे किसी गर्भ में? रोहिणी की गर्भ में, इसीलिए रोहिणी का पुत्र ये संकर्षण भी कहलाएगा, वह गोकुल के सारे निवासी को प्रसन्न करेगा, वह इनको आनंद प्रसन्न करने की प्रसन्न रखने की क्षमता रखता है, और सबको ये आनंद गोकुल ब्रजवासी को सबको आनंदित करेगा, इसलिए इनके राम कहलाएगा, इसके नाम एक क्या रहेगा? राम, इनके सभी को आनंद देने वाला है, ब्रजवासियों को प्रसन्न करने वाला है, इसलिए राम कहलाएगा। और आपने प्रचुर है बलभद्र बलक्षयात्, प्रचुर शक्ति शारीरिक के शक्ति के कारण इसका नाम एक रहेगा क्या? बलभद्र। ये गर्गमुनि तो बाद में जन्म होने के बाद कई दिन बाद नामकरण हुआ तो मुझे नाम, लेकिन पहले भगवान ने नाम रख दिया, कृष्ण स्वयं इनके नाम कह दे कि एक नाम उनके संकर्षण, एक नाम उनके राम, और तीसरे नाम इनका है बलभद्र बलक्षयात, है ये बलभद्र इनके नाम होगा। इस प्रकार बलदेव के नाम का पहले से हो गया था ये जब इनकी जन्म की पहले, और भगवान ने विशेष रूप में जोगमाया को देवी कहे और ये जा कहे कि देवकी के गर्भ से मेरा अंश जो है तो उसको आकर्षित करके ही वहाँ स्थापन करो रोहिणी की गर्भ में। और जो ये जोगमाया देवी ने उनको स्थानांतरित कर रही थी देवकी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जोगमाया की देवकी ने सोचने लगा कि बालक खींच करके रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था, तो देवकी को लगा कि बहू से गर्भपात हो गया, फलत तो विशेष वो महल के सारे निवासियों को भी जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे, कहे कि हाय हाय देवकी का बच्चा हाँ? बच्चा जाता रहा है, गर्भपात हो गया। उनके साथ मिलकर कंस भी आके थोड़ा देखा वो तो वो, लेकिन वो भी आके समवेदना ज्ञापन करता था, लेकिन ये तो भगवान की इच्छा से ही स्थानांतरित हुआ देवकी के गर्भ से, क्योंकि वो रोहिणी इनकी ओरिजिनल माता है, किनकी प्रत्येक स्वयं माता बलराम की रोहिणी है, इसलिए रोहिणी गर्भ में स्थान, क्योंकि ये इसके गर्भ में क्यों आए देवकी गर्भ में, क्योंकि पहले सठ गर्भ आ गए थे, पाप सुन रहे थे पीछे, वो छह राक्षस थे, मरीची के पुत्र थे, बाद में आए वो ब्रह्मा जी की हंसे थे, ब्रह्मा जी अपने पुत्र के पीछे भागते थे, इसलिए उनके राक्षस जोनी में आना पड़े हैं। ये हिरण्यकशिप कशिपु के नाती बने, नहीं सॉरी मरीची के पुत्र बने थे, बाद में हिरण्यकशिपु के ही नाती कालनमी के पुत्र बने सुन रहे हैं। और क्योंकि हिरण्यकशिपु की तरफ ये भी प्रतापी बनना चाहते थे, हिरण्यकशिपु ये तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो इसलिए हिरण्यकशिपु इनको अभिशाप देकर कहा कि तुम दूसरे मेरे से भी बड़ा बलवान बनना चाहते हो, जाओ तुम्हें सभी तुम्हारी पिता के हाथ से ही मरोगे, तुम्हारी बाप ही तुमको मारेगा है कहकर के। इसलिए कालनेमी कौन बना, क्या बना, कंस बना, और उसकी कंस कंस के रूप में अपने पुत्र को मार रहा था, पिछले जन्म के जो पुत्र थे उनको सब एक एक करके मारा छे को है। और सप्तम सप्तम लेकिन देवकी का गर्भ भगवान की रहने के लिए आने, उस गर्भ में आने के लिए उस स्थान को पूरा पवित्र करने का है, उपयोगी बनाने के लिए ये अनंत शेष उसमें प्रवेश है, शेष प्रवेश करके ही उनकी काम है, उस स्थान को पूरा पूरी पवित्र करके क्लियर कर दिए हैं। इसलिए भगवान ने कहे जगमाया देवी को, अभी जो कार्य जिसके लिए जिस उद्देश्य में गए थे देवकी गर्भ में, वो हो गया, पूरे हो गया, वो पूरे देवकी की गर्भ को मेरे रहने का लायक बना दिए, अभी मैं उसमें प्रवेश करूंगा, पूरे छह ऐश्वर्य के साथ मैं उस देवकी गर्भ में प्रवेश करूंगा, इनको इसलिए इस गर्भ से कहाँ ट्रांसफर करो, रोहिणी की गर्भ में ट्रांसफर कर दो हाँ। इसलिए रोहिणी भी देव वसुदेव की भी एक रानी थी, और वो जैसे गोपाल चौपे में कोई विस्तार से तो वर्णन कर, गोपाल चौपे में जैसे वर्णन आता कि वो जीव गोस्वामी कहते कि शाम के समय में रोहिणी की कंस के डर से अन्य रानी सब भी भाग गए थे, सब आके सब रहते थे हैं गोकुल में, सब इधर छुपके सब रहते थे नंद भवन में। तो इसलिए रोहिणी क्या की नहीं, गर्भवती थी स्वयं को छुपा गया, तो इसलिए वो वसुदेव की सलाह लेकर तो आना था उसको नंद महाराज के घर में, लेकिन शाम के समय में वो स्वयं एक सैनिक की तो मिलिट्री सैनिक जैसे हैं, पैंट शर्ट पहन के अपने को और घोड़े की पीठी में बैठकर, घोड़े की घोड़ी लिखा पीठी में बैठकर, इन्होंने आपके जैसे सिपाही जैसे देखते तो देखते थे कोई सिपाही है, ऐसे करके उन्होंने घोड़े पीठ में बैठकर आ गए कहाँ, गोकुल में नंद भवन में आ गए थे हैं। कृष्ण का जन्म स्थान कहाँ है पता नहीं, कृष्ण है कोई कहता मथुरा, कोई बोलता गोकुल का, तो शंका है कई हम पब्लिकली नहीं कह सकते ऐसे, लेकिन बलराम जी की जन्म कहाँ है सबको पता है, कहाँ बलराम जी की जन्म स्थान है हैं, गोकुल में, परे पक्के ब्रजवासी है जन्म से ही है, वो गोकुल में ही जन्म लिए हैं, ब्रज में ही जन्म लिए, गोकुल में पूरा सबको पता है कि ये गोकुल में जन्म हुए हैं, रोहिणी नंदन है हाँ, ये वसुदेव के पुत्र उनके बारे में सब पता है, कृष्ण के बारे में थोड़ा सभी काम भगवान का थोड़ा चढ़ा है, किसका लड़का है पता भी नहीं, लोग कौन माता है, दो दो माता है, दो दो पिताजी है, कहाँ जन्म लिए किसी को पता नहीं कहाँ है, कई कहेगा गौड़िया वैष्णव लोग कहेंगे गोकुल में जन्म लिया है हैं, और जसोदा की पुत्र जसोदा पुत्री और पुत्र दोनों को जन्म कई है, बलराम पूरा क्लियर है, बलराम जी ये सब नहीं जानते, नट इनको कूटनीति पॉलिटिक्स और ये सब नहीं आता, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे सीधे हैं डीलिंग करते हैं, ये सब कृष्ण का तरफ घुमा घुमा फिर के नहीं है, भगवान की सब हर बात टेढ़ा है, वो खड़े रहेंगे भी टेढ़ा, बोलेंगे भी टेढ़ा, देखने टेढ़ा, सब कुछ है, लेकिन बलराम जी होने पर भी जानते हैं, कोई भी आ जाता है शरण में इसको शरण देते, कोई भी दुष्ट व्यक्ति कोई भी आता है भोले वाले हैं, और दुर्योधन जैसे व्यक्ति भी आके प्रणाम कर लिया, दंड बोले ठीक है हैं, शिष्य बना लिए, उसको स्वयं सिखाए गदायुद्ध सिखाए, इसलिए गदायुद्ध कौशल में सर्वश्रेष्ठ था कौन, बलराम जी से युद्ध शिक्षा प्राप्त किया था, लेकिन इसीलिए महाभारत के युद्ध के प्रारंभ से जब बोले कि बलराम जी कहे कि नहीं ये कन्हैया हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे हैं, वो हमारा सब युवत एक तो लक्ष्मणा को शादी किया तो ये संभव है, इसीलिए दुर्योधन भी हमारा संबंधी है हैं, अरे ये तुम लोग पांडव लोग बुआ का लड़का है कुंती का, तो इसलिए हमें इस झंझट में नहीं, हम नहीं फंसेंगे। कृष्ण कहे कि देखो भाई दाऊ जी, लेकिन मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, युद्ध लेकिन युद्ध देखने की मुझे इच्छा है, मैं अर्जुन को प्रतिशत दिया हूँ रथ में, थोड़ा बैठूंगा केवल। बलराम जी गुस्सा हो गए, बोले जो बोलना हमेशा तुम कन्हैया तुम्हारे बात में कुछ रखता है अंदर में है, जा तुम जो करना करो, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा में। निकल गए हैं, बड़े शांति प्रिय है, वो समय इसमें प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो जानते हैं, सब समय होश में रहते हैं, कृष्ण स्वयं भगवान ये जानते हैं। यदि वो भीम कुमार मैंने भीम को मारने के लिए गदा उठा लिए थे, क्योंकि भीम ने प्रहार किया इनके जंघा में किसकी, लेकिन समझ गए बाद में जब कृष्ण ने समझा दिए, देखिए कि कृष्ण चाहता था, कृष्ण ही की इच्छा है कि ये मरे, तो फिर चुप हो गए। सुभद्रा के विवाह में है, सुभद्रा के वो कहते थे कि नहीं ये लक्ष्मण को शादी कर, नहीं सुभद्रा को विवाह करूंगा दुर्योधन के साथ, ये उनका प्लान था, किसका, बलराम जी का अपना से, लेकिन कृष्ण जानते थे सुभद्रा और वो अर्जुन का संबंध था पहले से, इसलिए भगवान का प्लान और कुछ था, बीच में सुभद्रा को भेज दो, सुभद्रा ने भगवान का इतनी इनकी सलाह से जब अर्जुन ने अर्जुन जब हरण किया सुभद्रा को, रथ कौन चलाने लगा, सुभद्रा रथ चला रहा था, अर्जुन बैठा था। बलराम तो क्रोधित हो गए, बोला आज अर्जुन का नाम मिटा दूंगा, है साधु वेश में आया, सन्यासी वेश में आकर कन्या हरण करके लेके जा रहा है मैं इसका नाम। लेकिन भगवान ने देखे तो उन्हें बताया, बोले दाऊ जी कौन किसको हरण कर रहा था, अरे सबको बोले कौन रथ चला रहा था, रथ को लेके भागा रहा था कौन, नहीं तो सुभद्रा तो चला रही थी रथ, अब बोले देखिए दाऊ जी आज सुभद्रा राजू अर्जुन को हरण कर रहा था कि हरो अर्जुन। भगवान के तो फिर बलराम जी समझ गए ये सब इसी का ही है। लेकिन जब उनको पता चलता कि ये सब कृष्ण का इच्छा, फिर चुप हो जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं बलराम है। तो इसलिए वो सदा सेवक अभिमान करके ही सेवा करते, समय हो गया है नहीं पर रखे, मैं भी थोड़ा रूम में जाएगी फिर थोड़ा सा फ्रेश होकर आऊँगा अभिषेक में। तो बहुत कथा तो कहा जा सकता है, बलराम जी कथा अनंत उनके नाम है, कथा भी अनंत है। तो यही पर वाणी को विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बलराम जी की जय, दाऊ जी की जय।